जलसा बड़ी सुंदरता से समाप्त हुआ। रानी गायत्री के व्याख्यान पर समस्त देश में वाह वाह मच गई। उसमें सनातन धर्म संस्था का ऐतिहासिक दर्शन कराने के बाद उसकी उन्नति और पतन और उसके उद्धार और सुधार और उसकी विरोधिता सहायक शक्तियों का बड़ी योग्यता से निरूपण किया गया था। संस्था के वर्तमान दशा और भावी लक्ष्य की बड़ी मार्मिक आलोचना की गई थी। पत्रों में उस वक्तृत्वता को पढ़कर लोग चकित हो जाते थे और जिन्होंने उसे अपने कानों से सुना वे उसका स्वर्गीय आनंद कभी न भूलेंगे। क्या वाक्य शैली थी, कितनी सरल, कितनी मधुर, कितनी प्रभावशाली, कितनी भावमय वक्तृत्वता क्या थी, एक मनोहर गान था। 3 दिन बीत चुके थे। ज्ञानशंकर अपने भव्य भवन में समाचार पत्रों का एक दफ्तर सामने रखे बैठे थे। आजकल उनका यही काम था कि पत्रों में जहाँ कहीं इस जलसे की आलोचना हुई तुरंत काट कर रख लेते। गायत्री अब ज्ञानशंकर को देवतुल्य समझती थी। उन्हीं की बदौलत आज समस्त देश में उसकी सुकृति की धूम मची हुई थी। उनके इस अतुल उपकार का एक ही उपहार था और वह प्रेमपूर्ण श्रद्धा थी। संध्या हो गई तो अकस्मात ज्ञानशंकर पत्रों की एक पोट लिए हुए अंदर गए और गायत्री से बोले, देखिए राय साहब ने यह नया शिकुपा छोड़ा। गायत्री ने भौं चढ़ाकर कहा, मेरे सामने उनका नाम न लीजिए। मैंने उनकी कितनी चिरौरी की थी कि एक दिन के लिए जलसे में अवश्य आइए, पर उन्होंने जरा भी परवाह न की, पत्र का उत्तर तक न दिया। बाप है तो क्या, मैं उनके हाथों भी अपना अपमान नहीं सह सकती। ज्ञान, मैंने तो समझा था यह उनकी लापरवाही है, लेकिन इस पत्र से विदित होता है कि आजकल एक दूसरी ही धुन में है, शायद इसी कारण अवकाश न मिला हो। गायत्री, क्या बात है, किसी अंग्रेज से लड़ तो नहीं बैठे? ज्ञान, नहीं, आजकल एक संगीत सभा की तैयारी कर रहे हैं। गायत्री, उनके यहाँ तो 12वां माह संगीत सभा होती रहती है। ज्ञान, नहीं, यह उत्सव बड़ी धूम से होकर देश के समस्त गवैयों को निमंत्रित पत्र भेजा गया है। यूरोप से भी कोई जगत विख्यात गायनाचार्य बुलाए जा रहे हैं। रईसों और अधिकारियों को दावत दी गई है, 1 सप्ताह तक जलसा होगा। यहाँ के संगीत शास्त्र और पद्धति में सुधार करना उनका उद्देश्य है। गायत्री, हमारा संगीत शास्त्र ऋषियों का रचा हुआ है, इसमें कोई क्या सुधार करेगा? इसी भैरव और द्रुपद के शब्द यशोदा नंदन के वंश से निकलते थे, पहले कोई गा ले तो सुधारना तो छोटी बड़ी बात है। ज्ञान, राय साहब को कोई और चिंता तो है नहीं, एक न एक स्वांग रचते रहते, कर्ज बढ़ता जाता है, रियायत रियासत बोझ से दबी जाती है, पर वह अपनी धुन में किसी की कब सुनते हैं? मेरा अनुमान है इस समय उन पर 3 लाख देना होगा। गायत्री, इतना धन कृष्ण भगवान की सेवा में खर्च करें तो परलोक बन जाता, चिट्ठियां तो खोलिए, जरूर कोई पत्र होगा। ज्ञान, हाँ देखिए यह लिफाफा ने उन्हीं का मालूम होता है। हाँ उन्हीं का है, मुझे बुला रहे हैं, आपको भी बुला रहे हैं। गायत्री, मैं जा चुकी, अब तक मैं यहाँ आने में उनकी हेठी समझते हैं, तो मुझे क्या पड़ी कि उनके जलसे तमाशों में जाऊँ। हाँ विद्या को चाय पहुँचा दीजिए, मगर शर्त यह कि आप 2 दिन से ज़्यादा महान ठहरें। ज्ञान, इसके विषय में सोचकर निश्चय करूँगा। यह 2 पत्र बरहाल और आम गाँव के कारिंदों के, दोनों लिखते हैं कि आसामी सभा का चंदा देने से इनकार करते हैं। गायत्री की तीव्रियाँ बदल गईं, प्रेम की देवी क्रोध की मूर्ति बन गई, बोली, क्या देहातों में भी यह हवा फैलने लगी? कारिंदों को लिख दीजिए कि इन पाजियों के घर में आग लगवा दें और उन्हें कोड़ों से पिटवाएं। उनका यह दिन ही कि मेरी आज्ञा का अनादर करें। देवकी नंदन, तुम इन पर पिशाचों को क्षमा करो, आज ही वहाँ आदमी रवाना करें। मैं अवज्ञा नहीं सह सकती, सबके सब कृतज्ञ हैं। किसी दूसरे राज में होते तो आटे दाल का भाव खुलता। मैं इनके साथ इतनी रियायत करती हूँ, इनकी मदद के लिए तैयार रहती हूँ, इनके लिए नुकसान उठाती है और उनका यह फल। ज्ञान, यह मुंशी राम सनेही का पत्र है, लिखते हैं ठाकुर दारे का काम 3 दिन से बंद है, बेगारों की कितनी ताकीद की जाती है मगर काम पर नहीं आते। गायत्री, उन्हें मजूरी दी जाती है ना? ज्ञान जी, हाँ, लेकिन जमींदारी की दर से दी जाती है। जमींदारी शरह 2 आने हैं, आम शरह 6 आने हैं। गायत्री, आप उचित समझो तो राम सनेही को लिख दीजिए कि 4 आने के हिसाब से मजूरी दी जाए। ज्ञान, लिख तो दूँ, वास्तव में 2 आने में एक पेट भी नहीं भरता, लेकिन इन मूर्ख उजड़ गवारों पर दया की भी जाए तो वह समझते हैं कि दब गए, कल कुछ आने मांगने लगेंगे और फिर बात भी न सुनेंगे। गायत्री, फिर लिख दीजिए कि बेगारों को जबरदस्ती पकड़वा लें, अगर न आए तो उन्हें गांव से निकाल दीजिए। हम स्वयं दया भाव से चाहें उनके साथ जो सलूक करें, मगर यह कदापि नहीं हो सकता कोई आसामी मेरे सामने हेकड़ी जताए, अपना रोब और भय बनाए रखना चाहिए। ज्ञान, यह पत्र अमेलिया के बाजार से आया, ठेकेदार लिखता है लोग गोले के भीतर गाड़ियाँ नहीं लाते, बाहर की रणों के नीचे अपना सौदा बेचते हैं, कहते हैं हमारा जहाँ जी चाहेगा बैठेंगे, ऐसी दशा में ठीका रद्द कर दिया जाए अन्यथा मुझे बड़ी हानि होगी। गायत्री, बाजार के बाहर भी तो मेरी जमीन है, वहाँ किसी को दुकान रखने का क्या अधिकार है? ज्ञान, कुछ नहीं, बदमाशी है, बाजार में रुपये पीछे 1 पैसा बाई देनी पड़ती है, तौल ठीक ठीक होती है, कुछ धर्मार्थ कटौती देनी पड़ती है, बाहर मनमाना राज है। गायत्री, यह क्या बात है, जो काम जनता के सुविधे और आराम के लिए किए जाते हैं उनका भी लोग विरोध करते हैं। ज्ञान, कुछ नहीं, यह मानव प्रकृति है, मनुष्य को स्वभावतः दबाव से रोकथाम से चाहे वह किसी के उपकार के लिए क्यों न हो चिड़ होती है। किसान अपने मूर्ख पुरोहित के पैर धो धोकर पिएगा, लेकिन कारिंदा को चाहे वह विद्वान ब्राह्मण ही क्यों न हो सलाम करने में भी उसे संकोच होता है। यूँ चाहे वह दिन भर धूप में खड़ा रहे, लेकिन कारिंदा या चपरासी को देखकर चारपाई से उठना भी असह्य होता है। वह आठों पर अपनी दीनता और व्यवस्था के भार से दबा रहना नहीं चाहता, अपनी खुशी से नीम की पत्तियां चबाएगा, लेकिन जबरदस्ती दूध और शरबत भी न पिएगा, यह जानते हुए भी कि हम उन पर सख्ती करने के लिए बाध्य हैं। इतने में मायाशंकर एक पीताम्बर ओढ़े हुए ऊपर से उतरा। अब उसकी उम्र 14 वर्ष से अधिक न थी, किंतु मुख पर एक विलक्षण गंभीरता और विचारशील झलक रख रही थी, जो इस अवस्था में बहुत कम देखने में आती। ज्ञानशंकर ने पूछा, कहाँ चले मन्नू? माया नतीब्र नेत्रों से देखते हुए कहा, घाट की तरफ संध्या करने जाता हूँ। ज्ञान, आज सर्दी बहुत है, यहीं बाग में क्यों नहीं कर लेते? माया, माया एकांत में चित्त खूब एकाग्र हो जाता है। मैं चला गया तो ज्ञानशंकर ने कहा, इस लड़के का स्वभाव विचित्र है, समझ में नहीं आता। संवरिया सब तैयार हैं पर पैदल जाएगा, किसी के साथ भी नहीं लेता। गायत्री, महरियाँ कहती हैं अपना बिछावन तक किसी को छूना नहीं देते, और बेचारियाँ उनका मुंह जोहा करती हैं, कोई काम करने के लिए कहें पर उन्हें किसी से कोई मतलब ही नहीं। ज्ञान, इस उम्र में कभी कभी यह सनक सवार हो जाया करती है। संसार का कुछ ज्ञान तो होता नहीं, पुस्तकों में जिन नियमों की सराहना की गई है उसके पालन करने को प्रस्तुत हो जाता है, लेकिन मुझे तो यह कुछ मंद बुद्धि से जान पड़ता है। इतना बड़ा हुआ पैसे कदर ही नहीं जानता, अभी 100 दे दिए तो शाम तक पास कौड़ी न रहेगी, न जाने कहाँ उड़ा देता है, किंतु उसके साथ मांगता कभी नहीं। जब तक खुद न दीजिए अपनी जबान से कभी न कहेगा। गायत्री, मेरी समझ में तो यह पूर्व जन्म में कोई सन्यासी रहे होंगे। ज्ञानशंकर ने आज की गाड़ी से बनारस जाकर विद्या को साथ लेते हुए लखनऊ जाने का निश्चय किया। गायत्री बहुत करने सुनने पर भी राजी न हुई। राय कमलानंद को देखे हुए हमें लगभग 7 वर्ष हो गए, पर इस कालक्षेप का उन पर कोई चिन्ह नहीं दिखाई देता। बल, पौरुष, रंग ढंग सब कुछ वही है यथापूर्व। उनका समय शहर और शिकार, पोलो और टेनिस, राग और रंग में व्यतीत होता है। योगाभ्यास भी करते जाते हैं। धन पर वह कभी लोलुप नहीं हुए और अब भी उनका आदर नहीं करते। इस काम के धुन में उसके करके छोड़ते हैं, इसकी जरा भी चिंता नहीं करते कि रुपए कहाँ से आएंगे। वह अब भी सलाहकारी सभा के मेंबर हैं। इस बीच में 2 बार चुनाव हुआ और दोनों बार वही बहुमत से चुने गए। यद्यपि किसान और मध्य श्रेणी के मनुष्यों को भी वोट देने का अधिकार मिल गया था, तथापि राय साहब के मुकाबले में कौन जीत सकता था? किसानों के वोट उनके और अन्य भाइयों के हाथों में थे, और मध्य श्रेणी के लोगों को जातीय संस्थाओं से चंदे देकर वशीभूत कर लेना कठिन न था। राय साहब इतने दिनों तक मेंबर बने रहे, पर उन्हें इस बात का अभिमान था कि मैंने अपनी ओर से काउंसिल के सभी कोई प्रस्ताव नहीं किया। वह कहते, मुझे खुशामदीद टट्टू कहने में कोई किसी को कोई आनंद मिलता है तो कहे, मुझे देश और जाति का द्रोही कहने में अगर किसी का पेट भरता तो मुझे कोई शिकायत नहीं, पर मैं अपने स्वभाव को नहीं बदल सकता। अगर रस्सी तुड़ाकर मैं जंगल में अबाध फिर सकूं तो मैं आज ही खूंटा उखाड़ फेंकूं, लेकिन जब जानता हूं कि रस्सी तुड़ाने पर भी मैं बाड़े से बाहर नहीं जा सकता बल्कि ऊपर से और डंडे पड़ेंगे, तो फिर खूंटे पर चुपचाप खड़ा क्यों न रहूं? और कुछ नहीं तो मालिक की कृपा दृष्टि तो रहेगी। जब राजसत्ता अधिकारियों के हाथों में है, हमारे असहयोग और सम्मति में से उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता, तो इसकी जरूरत क्या जरूरत है कि हम व्यर्थ अधिकारियों पर टीका टिप्पणी करने बैठें और उनकी आंखों में खटकें। हम काट के पुतले हैं, तमाशा दिखाने के लिए खड़े किए गए हैं, इसलिए हमें डोरी के इशारे पर नाचना चाहिए। यह हमारी खामख्याली है कि अपने को राष्ट्र का प्रतिनिधि समझते हैं। जाति हम जैसे को, जिसका अस्तित्व ही उसके रक्त पर अवलंबित है, कभी अपना प्रतिनिधि न बनाएगी। जिस दिन जाति में अपना हानि लाभ समझने की शक्ति होगी, हम और आप खेतों में कुदाली चलाते नजर आएंगे। हमारा प्रतिनिधित्व संपूर्णतः हमारे स्वार्थपरता और सम्मान लिप्सा पर निर्भर है। हम जाति के हितैषी नहीं हैं, हम उसे केवल स्वार्थ सिद्धि का यंत्र बनाए हुए हैं। हम लोग अपने वेतन की तुलना अंग्रेजों से करते हैं क्यों? हमें तो सोचना चाहिए कि रुपये हमारी मुट्ठी में न आकर यदि जाति की उन्नति और उपकार में खर्च हो तो अच्छा है। अंग्रेज अगर दोनों हाथों से धन बटोरते हैं तो बटोरने दीजिए, वैसे उद्देश्य से इस देश में आए हैं। उन्हें हमारी जाति प्रेम का दावा नहीं, हम तो जाति भक्ति की हाँक चलाते हुए विदेश का गला घोट देते हैं। हम अपने जाति व्यवस्था के अध्यापतन का रोना रोते हैं। मैं कहता हूँ आपके हाथों यह दशा और असाध्य हो जाएगी। हम अगणित मिले खोलेंगे, बड़ी संख्या में कारखाने कायम करेंगे, परिणाम क्या होगा? हमारे देहात वीरान हो जाएंगे, हमारे कृषक कारखानों के मजदूर बन जाएंगे, राष्ट्र का सत्यानाश हो जाएगा। आप इसी को जाति उन्नति की चरम सीमा समझते हैं? मेरी समझ में यह जातीयता का घोर अधःपतन है। जाति की जो कुछ दुर्गति हुई है हमारे हाथों हुई है। हम जमींदार हैं, साहूकार हैं, वकील हैं, सौदागर हैं, डॉक्टर हैं, पदाधिकारी हैं, इनमें कौन जाति की सच्ची वकालत करने का दावा कर सकता है? आप जाति के साथ बड़ी भलाई करते हैं तो काउंसिल में अनिवार्य शिक्षा का प्रस्ताव पास करा देते हैं। अगर आप जाति के सच्चे नेता होते तो यह निरंकुशता कभी न करते। कोई अपनी इच्छा के विरुद्ध स्वर्ग भी नहीं चाहता। हमें तो कितने महोदयों ने बड़ी बड़ी उपाधियां प्राप्त की हैं, पर इस उच्च शिक्षा ने हमें सिवा विलास, लालसा और सम्मान, प्रेम, स्वार्थ सिद्धि और अहमन्यता के और कौन सा सुधार कर दिया? हम अपने घमंड में अपने को जाति का अत्यावश्यक अंग समझते हैं, पर वस्तुतः हम कीट पतंग से भी गए बीते हैं। जाति सेवा करने के लिए 2000 मासिक, मोटर, बिजली, पंखे, फीटर, नौकर या चाकर की क्या जरूरत है? आप रूखी रोटियां खाकर जाति की सेवा इससे कहीं उत्तम रीति से कर सकते हैं। आप कहेंगे, वाह, हमने परिश्रम से विद्योपार्जन किया है, क्या इसलिए? तो जब आपने कायिक सुखभोग के लिए इतना व्यवसाय किया है, तब जाति पर इसका क्या एहसान? आप किस मुंह से जाति के नेतृत्व का दावा करते हैं? आप मेले खोलते हैं तो समझते हैं हमने जाति की बड़ी सेवा की, पर यथार्थ में आपने 10-20 हज़ार आदमियों को वनवास दे दिया। आपने अपने दैनिक नैतिक और सामाजिक पतन का सम्मान पैदा कर दिया। हाँ, आपने और आपके साझेदारों ने 45% सैकड़े लाभ अवश्य उठाया। तो भाई, जब तक ये धींग धींग चलती है चलने दो, न मुझे बुरा कहो न तुम्हें बुरा कहो, और हम और आप नरम और गर्म दोनों ही जाति के शत्रु हैं। अंतर यह है कि मैं अपने को शत्रु समझता हूँ, आप अहंकार के मत अपने को उसका मित्र समझते। इन तर्कों को सुनकर लोग उनकी बक्की और झक्की कहते थे। अवस्था के साथ राय साहब का संगीत प्रेम और भी बढ़ता जाता था। अधिकारियों से मुलाकात का उन्हें अब इतना व्यसन नहीं था। जहाँ कहीं किसी उस्ताद की खबर पाते तुरंत बुलाते और यथायोग्य सम्मान करते। संगीत की वर्तमान अभिरुचि को देखकर उन्हें भय होता था कि अगर कुछ दिनों यही दशा रही तो इसका स्वरूप भी मिट जाएगा। देश और भैरव की तमीज की भी कभी न होगी। वह संगीत कला को जाति की सर्वश्रेष्ठ संपत्ति समझते थे। इसकी अवनति उनकी समझ में जातीय पतन का निकृष्टतम स्वरूप था। व्यय का अनुमान 4 लाख किया गया था। राय साहब ने किसी सहायता मांगना उचित न समझा, लेकिन कई रईसों ने स्वयं 2-2 लाख के वचन दिए थे। तभी राय साहब पर 2-2.5 लाख का भार पड़ना सिद्ध था। यूरोप से 6 नामी संगीतज्ञ आ रहे थे, 2 जर्मनी से, 2 इटली से, 1 फ्रांस और 1 इंग्लिस्तान से। मैसूर, ग्वालियर, ढाका, जयपुर, कश्मीर के उस्तादों को निमंत्रण पत्र भेज दिए थे। राय साहब का प्राइवेट सेक्रेटरी सारे दिन पत्र व्यवहार में व्यस्त रहता था। इस पर भी चिट्ठियों की इतनी कसरत हो जाती थी कि बहुधा राय साहब को स्वयं जवाब लिखने पड़ते थे। इसी काम को निपटाने के लिए उन्होंने ज्ञान शंकर को बुलाया और वह आज ही विद्या के साथ आ गए थे। राय साहब ने गायत्री के न आने पर बहुत खेद प्रकट किया और बोले, वह इसलिए नहीं आई कि मैं सनातन धर्म सभा के उत्सव में न आ सका था। अब रानी हो गई है, क्या इतना भी गर्व न होगा? यहाँ तो मरने की भी छुट्टी नहीं होती, जाता क्यों कर? ज्ञानशंकर रात भर के जगे थे, भोजन करके लेटर तीसरे पार उठे। राय साहब दीवान खाने में बैठे हुए चिट्ठियां पढ़ रहे थे। ज्ञानशंकर को देखकर बोले, आइए भगत जी, आइए। तुमने तो काया ही पलट दी, बड़े भगवान हो कि इतनी अवस्था में ज्ञान प्राप्त कर लिया। यहाँ तो मरने के लिए किनारे आए पर अभी माया मोह से मुक्त न हुआ। यह देखो, पूना से प्रोफेसर मधुलकर ने यह पत्र भेजा है। उन्होंने जाने की शंका हो गई कि मैं इस देश में विदेशी संगीत का प्रचार करना चाहता हूँ। इस पर आपने मुझे खूब आड़ों हाथों लिया है। ज्ञानशंकर मतलब की बात छेड़ने के लिए अधीर हो गए थे। अवसर मिल गया, बोले, आपने यूरोप के लोगों को नाहक बुलाया, इसी से जनता की ऐसी शंकाएं हो रही हैं, इन लोगों की फीस तय हो गई है। राय साहब, हाँ, यह तो पहली बात है। 2 सज्जनों की फीस तो रोजाना 2-2 हज़ार है। सफर का खर्च अलग, जर्मनी के 2-2 महाशय 1-1.5 हज़ार रोजाना लेंगे। केवल इटली के दोनों आदमियों ने स्वार्थ भाव से शरीक होना स्वीकार किया है। ज्ञान, अगर ये चारों महाशय यहाँ 15 दिन में रहे तो 1 लाख तो उन्हीं को चाहिए। राय, हाँ, इसमें क्या कम होगा? ज्ञान, तो कुल खर्च आए 5-5.5 लाख तक जा पहुँचे। राय, तखमीना तो 4 लाख का किया था, लेकिन शायद इससे कुछ ज़्यादा ही पड़ जाए। ज्ञान, यहाँ कई रईसों ने भी कुछ हिम्मत दिखाई। राय, हाँ, कई सज्जनों ने वचन दिए, संभव है 2 लाख मिल जाए। ज्ञान, अगर वह अपने वचन पूरे भी कर दे तो आपको 2.5-3 लाख की जेरबारी होगी। राय साहब ने व्यंगपूर्ण हास्य के साथ कहा, मैं उसे जेरबारी नहीं समझता, धन सुखभोग के लिए है, उसका और कोई उद्देश्य नहीं है। मैं धन को अपनी इच्छाओं का गुलाम समझता हूँ, उसका गुलाम बनाना नहीं चाहता। ज्ञान, लेकिन वारिसों को भी तो सुखभोग का कुछ न कुछ अधिकार है। राय, संसार में सब प्राणी अपने कर्मानुसार सुख दुख भोगते हैं, मैं किसी के भाग्य का विधाता नहीं हूँ। ज्ञान, क्षमा कीजिएगा, यह शब्द ऐसे पुरुष के मुंह से शोभा नहीं देते जो अपने जीवन का अधिकांश बिता चुके हों। राय साहब ने कठोर स्वर से कहा, तुमको मुझे उपदेश देने का कोई अधिकार नहीं है, मैं अपनी संपत्ति का स्वामी हूँ, मुझे अपनी इच्छा और रुचि के अनुसार खर्च करूँगा। यदि इससे तुम्हारे सुख स्वप्न नष्ट होते हैं तो हूँ, मैं अपनी परवाह नहीं करता। यह मुमकिन नहीं कि सारे संसार में इस कॉन्फ्रेंस की सूचना देने के बाद मैं उसे स्थगित कर दूँ। मेरी सारी जायदाद बिक जाए तो मैं भी अपने को काम उठाया है उसे अंत तक पहुंचाकर छोड़ूंगा। मेरी समझ में नहीं आता कि तुम कृष्ण कैसे भक्त और त्याग तथा वैराग्य कैसे साधक होकर माया मोह में इतने लिप्त क्यों हो। जिसने कृष्ण का दामन पकड़ा, प्रेम का आश्रय लिया, भक्ति की शरण गई, उसके लिए सांसारिक वैभव क्या चीज़ है? तुम्हारी बातें सुनकर, तुम्हारे चित्त की यह वृत्ति देखकर मुझे संशय होता है कि तुमने यह बहुरूप धरा है और प्रेम भक्ति का स्वाद नहीं पाया। कृष्ण का अनुरागी कभी इतना संकीर्ण हृदय नहीं हो सकता। मुझे अब शंका हो रही है कि तुमने यह जाल कहीं सरल हृदय गायत्री के लिए न फैलाया हो। यज्ञा कर राय साहब ने ज्ञानशंकर को तीव्र नेत्रों से देखा। उनके संदेह का निशाना इतना ठीक बैठा था कि ज्ञानशंकर का हृदय कांप उठा। इस भ्रम का मूलच्छेद करना परमावश्यक था। राय साहब के मन में इसका जगह पाना अत्यंत भयंकर था। इतना ही नहीं, इस भ्रम को दूर करने के लिए निर्भीकता की आवश्यकता थी। शिष्टाचार का समय न था। बोले, आपके मुख से स्वांग और बहुरूप की लांछना सुनकर एक मसल याद आती है, लेकिन आप पर इसे घसीट करना नहीं चाहता। जो प्राणी धर्म के नाम पर विषय वासना और विषपान को स्तुत्य समझता हो, वह यदि दूसरों की धार्मिक वृत्ति को पाखंड समझे तो क्षम्य है। राय साहब ने ज्ञान शंकर को फिर चुभती हुई दृष्टि से देखा और कड़ी आवाज से बोले, तुम्हें सच कहना होगा। ज्ञान शंकर को ऐसा अनुभव हुआ मारे उनके हृदय पर कोई पर्दा सा उठ रहा है, उन पर एक अर्ध विस्मृति सी छा गई है। दीन भाव से बोले, जी हाँ सच कहूंगा। राय, तुमने यह जाल किसके लिए फैलाया है? ज्ञान, गायत्री के लिए। राय, तुम उसे क्या चाहते हो? ज्ञान, उसकी संपत्ति, उसका प्रेम। राय साहब खिलखिलाकर हंसे। ज्ञान शंकर को जान पड़ा जैसे कोई स्वप्न देखते थे, जाग उठा। उनके मुंह से जो बातें निकली थी वह उन्हें याद थी। उनका कृत्रिम क्रोध शांत हो गया, उसके जगह उस लज्जा और दीनता ने ले ली जो किसी अपराधी के चेहरे पर नजर आती। वह समझ गए कि राय साहब ने मुझे अपने आत्मबल से वशीभूत करके मेरी दुष्कर्म पलनाओं को स्वीकार करा लिया। इस समय वह उन्हें अत्यंत भयावह रूप से देख पड़ते थे। उनके मन में अत्याचार का प्रत्याघात करने की घातक चेष्टा लहरें मार रही थी, पर इसके साथ ही उन पर विचित्र भय आच्छादित हो गया था। वही शैतान के सामने अपने को सर्वथा निर्बल और शक्त पाते थे। परिस्थितियों से वह ऐसे उद्विग्न हो रहे थे कि जी चाहता था आत्महत्या कर लूं। जिस भवन को वह 6-7 वर्षों से एक एक ईंट जोड़कर बना रहे थे, इस समय वह हिल रहा था और निकट था कि गिर पड़े। उसे संभालना उनकी शक्ति से बाहर था। शोक, मेरे मन सीबे मिट्टी में मिल जाते हैं, उधर से भी गया इधर से भी गया, यकायक राय साहब बोले। बेटा, तुम व्यर्थ मुझ पर इतना कोप कर रहे हो। मैं इतना क्षुद्र हृदय नहीं हूं तुम्हें गायत्री की दृष्टि में गिराऊं। जिसकी जायदाद तुम्हारे हाथ लग जाए तो मेरे लिए इससे ज्यादा हर्ष की बात और क्या होगी, लेकिन तुम्हारी चेष्टा उसकी जायदाद तक ही रहती तो मुझे कोई आपत्ति न होती। आखिर यह जायदाद किसी न किसी को मिलेगी ही, और जिन्हें मिलेगी वह मुझे तुमसे ज्यादा प्यारे नहीं हो सकते, लेकिन मैं उसके सतीत्व को उसकी जायदाद से कहीं ज्यादा बहुमूल्य समझता हूँ, और उस पर किसी की लोलुप दृष्टि पड़ना सहन नहीं कर सकता। तुम्हारे सच्चरित्रता की मैं सराहना किया करता था, तुम्हारी योग्यता और कार्यपरता का मैं कायल था, लेकिन मुझे इसका गुमान भी न था कि तुम इतने स्वार्थ भक्त हो। तुम मुझे पाखंड और विषयी समझते हो, मुझे इसका जरा भी दुख नहीं है। अनात्मवादियों को ऐसी शंका होनी स्वाभाविक है, किंतु मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि मैंने कभी सौंदर्य की वासना की दृष्टि से नहीं देखा। मैं सौंदर्य की उपासना करता हूँ, उसे अपने आत्मनिग्रह का साधन समझता हूँ, उसे आत्मबल संग्रह करता हूँ, मुझे अपनी कुचेष्टाओं की सामग्री नहीं बनाता। और मान लो मन विषयी ही सही, बहुत दिन बीत गए, थोड़े दिन और बाकी हैं, जैसा हम अब तक रहा होगा आगे भी रहूंगा। अब मेरा सुधार नहीं हो सकता, लेकिन तुम्हारे सामने अभी उम्र पड़ी हुई, इसलिए मैं तुमसे अनुरोध करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि इच्छाओं के कुवासनाओं के गुलाम मत बनो। तुम इस भ्रम में पड़े हुए हो कि मनुष्य अपने भाग्य का विधाता है, यह सर्वथा मिथ्या है। हम तकदीर के खिलौने, विधाता नहीं। वह हमें अपनी इच्छा अनुसार नचाया करती है। मुझे क्या मालूम है कि जिसके लिए तुम सत्यासत्य में विवेक नहीं करते, पुण्य और पाप को समान समझते हो, वह उस शुभ मुहूर्त तक उसे विघ्न बाधाओं से सुरक्षित रहेगा। संभव है कि ठीक समय पर जब जायदाद पर उसका नाम चढ़ाया जा रहा हो तो एक फुंसी उसका काम तमाम कर दे। यह न समझो कि मैं तुम्हारा बुरा चेत रहा हूँ, तुम्हें आशाओं की असारता का केवल एक स्वरूप दिखाना चाहता हूँ। मैं तकदीर की कितनी ही लीलाएं देखी हैं और स्वयं इसका सताया हुआ हूँ। मुझे अपनी शुभ कल्पनाओं के सांचे में ढालना हमारी सामर्थ्य से बाहर है। मैं नहीं चाहता कि तुम अपने और अपनी संतान के हित की चिंता मत करो, धनोपार्जन न करो, नहीं खूब धन कमाओ, खूब समृद्धि प्राप्त करो, किंतु अपनी आत्मा और ईमान को इस पर बलिदान न करो। धूर्तता और पाखंड, छल और कपट से बचते रहो। मेरी जायदाद 20 लाख से कम की मालकियत नहीं है। अगर 2-4 लाख कर्ज ही हो जाए तो तुम्हें घबराना नहीं चाहिए। क्या इतनी संपत्ति माया शंकर के लिए काफी नहीं है? तुम्हारी पैतृक संपत्ति भी 2 लाख से कम की नहीं है। अगर इसे काफी नहीं समझते तो गायत्री की जायदाद पर भी निगाह रखो, इसे मैं बुरा नहीं कहता। अपने सुप्रबंध से, कार्यकुशलता से, किफायत से, यथेच्छा से उसकी कृपा पात्र बन जाओ, न कि उसके भोलेपन, उसकी सरलता और मिथ्या भक्ति को अपनी कूटनीति का लक्ष्य बनाओ और प्रेम का स्वांग भरकर उसकी जीवन रत्न पर हाथ बढ़ाओ। इतने प्राइवेट सेक्रेटरी आ गए, राय साहब उनके आकृष्ट हो गए। ज्ञान शंकर रो रहे थे, भेद खुल जाने का शोक था, चित संचित अभिलाषाओं को विनष्ट हो जाने का दुख, कुछ ग्लानि, कुछ अपनी दुर्दशा का खेद, कुछ निर्बल क्रोध, तर्कना शक्ति इतने आघातों का प्रतिरोध न कर सकती थी। ज्ञान शंकर उठकर बाग में एक बेंच पर जा बैठे। माघ का महीना था और संध्या का समय, लेकिन उन्हें इस समय जरा भी सर्दी न लगती थी। समस्त शरीर अंतस्थ चिंताधार से खौल रहा था। राय साहब का उपदेश संपूर्णतः विस्मृत हो गया था। केवल यह चिंता थी कि गिरती हुई दीवार को क्यों कर थामे, मरती हुई अभिलाषाओं को क्यों कर संभाले। यह महाशय कहते थे कि मैं गायत्री से कुछ न कहूंगा, लेकिन इनका एतबार ही क्या, इन्होंने या जहां उनके कान भरे वह मेरी सूरत से घृणा करने लगेगी। गौरवशील स्त्री है, उसे अपने सतीत्व पर घमंड है। यदि भी मुझसे प्रेम है, किंतु अभी तक उसका आधार धर्म है पर मनोवेग पर नहीं। उसकी स्थिति का क्या भरोसा, दुष्ट अपनी जायदाद का सर्वनाश तो किए ही डालता है, उधर का द्वार भी बंद किए देता है कि मुझे कहीं निकलने का मार्ग ही न मिले। मैं इतनी निराशाओं का भार नहीं सह सकता, इस जीवन में कोई मुझे आनंद नहीं रहा, अब अभिलाषाओं का ही अंत हुआ जाता है, तब मैं जीकर ही क्या करता, हाँ क्या सोचता था और क्या हो रहा है। राय साहब तो शाम को क्लब चले गए। ज्ञान शंकर इसी निर्जन स्थान पर बैठे हुए जीवन और मृत्यु का निर्णय करते रहे। उनकी दशा उस व्यापारी की सी थी जिसका सब कुछ जलमग्न हो गया हो, या उस विद्यार्थी की सी जो वर्षों के कठिन श्रम के बाद परीक्षा में गिर गया हो। जब बाग में खूब ओस पड़ने लगी तो वह उठकर कमरे में चले गए। फिर उन्हीं चिंताओं ने आ घेरा। जीवन में अब निराशा और अपमान के सिवा कुछ नहीं रहा। ठोकरे खाता रहूंगा, जीवनकंत भी अब मेरे डूबते हुए बेड़े को पार लगा सकता है। राजा साहब इतने नीच नहीं है कि मरने पर वे मुझे बदनाम करें। उन्होंने बहुत कुछ सच कहा कि मनुष्य को अपने भाग का खिलौना है। मैं इस दशा में हूँ कि मृत्यु ही मेरे दुखों का एकमात्र उपाय है। सामान्यतः लोग यही समझेंगे कि मैंने संसार में विरक्त होकर प्राण त्याग दिए, माया मोह के बंधन से मुक्त हो गया। ऐसी मुक्ति आत्मा के लिए अंधकारमय जगत अनुकूल न था। विद्या के निवगा में मेरी आदर कई गुना बढ़ जाएगा और गायत्री तो मुझे कृष्ण का अवतार समझने लगेगी। बहुत संभव है कि मेरी आत्मा को प्रसन्न करने के लिए वो माया को गोद ले ले। चचा और भाई दोनों मुझ पर कुपित हों, मौत उनको भी नर्म कर देगी। और मुश्किल ही क्या है, कल गोमते स्नान करने जाऊंगा, एक सीढ़ी भी नीचे उतर गया तो काम तमाम है। 20,000 तो मैं नगद छोड़े जाता हूँ, विद्या के निर्वाह के लिए काफी है। लगनपुर की आमदनी अलग। यह सोचते सोचते ज्ञान शंकर इतने शोकातुर हुए कि जोर जोर से सिसकियां भर कर रोने लगे। यही जीवन का फल है, इसलिए दुनिया भर के मनसूबे बाधे थे। वह दुष्ट कमलानंद मेरी गर्दन पर छुरी फेर रहा है, यही निर्दय मेरी जान का ग्राहक हो रहा है। इतने विद्यापति आ गए, बोली, आज दादाजी और मुझसे कुछ तकरार हो गई है क्या? मुख्तार साहब कहते थे कि राजा साहब बड़े क्रोध में थे, तुम नाहक उनके मुंह से बोला करते हो, वह जो कुछ करें उन करने दो। अम्मा समझाते समझाते मर गई, इन्होंने कभी रत्ती भर परवाह न की। अपने सामने वो किसी को कुछ समझते ही नहीं। ज्ञान, मैं तो केवल इतना ही कहा कि आपको व्यर्थ 2-3 लाख रुपये फूंक देना उचित नहीं, बस इतनी सी बात पर बिगड़ गए। विद्या, यह तो उनका स्वभाव ही है। यहाँ उनकी बात किसी ने काटी और आग हुए, बुरा तो मुझे भी लग रहा है पर मुँह खोलते कांपती हूँ। ज्ञान, मुझे उनकी जायदाद की परवाह नहीं है, मैं वृंदावन बिहारी का आश्रय लिया है, अब किसी का भी अभिलाषा नहीं है, लेकिन यह अनर्थ नहीं देखा जाता। विद्या चली गई। थोड़ी देर में महाराज ने भोजन की थाली लाकर रख दी, लेकिन ज्ञान शंकर कुछ खाने की इच्छा न हुई। थोड़ा सा दूध पी लिया और फिर विचारों में मग्न हुए। स्त्रियों के विचार इतने संकुचित होते हैं, तभी तो उन्होंने संतोष हो जाता है। मैं समझती है आदमी को चैन से भोजन वस्त्र मिल जाए, गहने जेवर बनते जाए, संतानें होती जाए, बस और क्या चाहिए। मानो जीवन भी अन्य जीवधारियों की भांति केवल स्वाभाविक आवश्यकताएं पूरी करने के लिए ही है। विद्या को कितना संतोष है, लोग स्त्रियों के इस गुण की बड़ी प्रशंसा करते हैं। मेरा विचार तो यह है कि यह धैर्य और संतोष उनकी बुद्धिहीनता का प्रमाण है। उनमें इतनी बुद्धि सामर्थ्य ही नहीं होती कि अवस्था और स्थिति का यथार्थ अनुमान कर सकें। राज साहब की फूंक ताप विद्या को भी अखरती है, लेकिन कुछ बोलती नहीं, जरा भी चिंतित नहीं है। यह नहीं समझती कि यह सरासर उनकी अपनी ही हानि है, अपना ही सर्वनाश है। दशा ने कैसा पलटा खाया है। अगर मेरे मन सुबह सफल हो जाते तो 2-4 वर्ष में 3 लाख रुपये वार्षिक का आदमी होता, 10-15 वर्षों में अतुल संपत्ति का स्वामी होता, लेकिन मन की मिठाई खाने से क्या होता है। ज्ञान शंकर बड़ी गंभीर प्रकृति के मनुष्य थे, उनमें शुद्ध संकल्प भी की कमी न थी। जोखिम में उनके पैर न उखड़ते थे, कठिनाइयों में उनकी हिम्मत छूटती थी। गोरखपुर में उन चारों ओर से दाव पेच होते रहते, लेकिन उन्होंने कभी परवाह न की। लेकिन उनकी अविचलता वह नहीं थी जो परिस्थिति का ज्ञान शून्यता की हद तक जा पहुंचती है। वह उन जुआरियों में नहीं था जो अपना सब कुछ एक साथ दांव पर लगाकर हार कर अकड़ते हुए चलते हैं। छोटी छोटी हारों का, छोटी छोटी असफलताओं का असर उन पर होता था न होता था, लेकिन उन मंतव्यों का नष्ट भ्रष्ट हो जाना जिन पर जीवन उत्सर्ग किया गया और धैर्य को भी विचलित और स्थिर कर देता है। और फिर यहाँ केवल नैराश्य और शोक न था, मेरे छल कपट का पर्दा खुल गया। मेरी भक्ति और धर्म निष्ठा की, मेरे वैराग्य और त्याग की, मेरे अच्छाइयों की, मेरे पवित्र आचरण की कलाई खुल गई। संसार अब मुझे यथार्थ रूप में देखेगा। अब तक मैंने अपनी तर्कनाओं से, अपनी प्रगल्भता से अपनी कलुषता को छिपाया, अब तक वह कहाँ थी। ज्ञान शंकर को नींद न आई। जरा आंखें चपक जाती तो भयावह सपने दिखाई देने लगते। कभी देखते मैं गोमती में डूब गया हूँ, कभी मेरा शव चिता पर जलाया जा रहा है, कभी नजर आता मेरा विशाल भवन विध्वंस हो गया और माया शंकर उसके भग्नावेश पर बैठा हुआ रो रहा है। एक बार ऐसा जान पड़ा गायत्री मेरी ओर से कोप दृष्टि से देख कर कह रही है, तो मक्कार हूँ, आंखें से दूर हो जाओ। प्रातःकाल ज्ञान शंकर उठे तो चित्त बहुत खिन्न था, ऐसे अलसाए हुए थे मानो कोई मंजिल तय करने आए। उन्होंने किसी से कुछ बातचीत न की, धोती उठाई और पैदल गोमती की ओर चले। अभी सूर्योदय नहीं हुआ था, लेकिन तंबाकू वालों की दुकानें खुल गई थी। ज्ञान शंकर ने सोचा यह तंबाकू ही जीवन की मुख्य वस्तु है कि सबसे पहले इसकी दुकान खुलती है। जरा देर में मलाई मक्खन की ध्वनि कानों से आई। दुष्ट कितना जीव ऐंठ कर बोलता है, समझता है कि यह कर्णकटु शब्द रुचिवर्धक होंगे। भला गाता तो एक बात भी थी। अच्छा, चाय गर्म भी आ पहुंची। गर्म तो अवश्य ही थी, बिना फूके पिए तो जीव जल जाए, मगर स्वाद वही गर्म पानी का। यह कौन महाशय घोड़ा दौड़ाए चले आते हैं, कोई फौजी अफसर है? घोड़ा जरा ठोक ले तो साहब बहादुर की हड्डियां चूर हो जाए। और गोमती के तट पर पहुंचे तो भक्तजनों की भीड़ देखी। श्यामल जलधारा पर श्यामल कुहिर की छटा छाई हुई थी। सूर्य की सुनहरी किरणें श्यामल घटा में प्रविष्ट होने के लिए उत्सुक थी। 2-4 नौकाएं पानी में खड़ी कांप रही थी। ज्ञान शंकर ने धोती चौकी पर रख दी और पानी घुसे तो सहसा उनकी आंखें सजल हो गई। कमर तक पानी में गए, आगे बढ़ने का साहस न हुआ। अपमान और निराश के जिन भावना उनकी प्रणाम को उत्तेजित कर रखा था, वह अकस्मात शिथिल पड़ गए। कितने रण मद के मत वाले रणक्षेत्र में आकर पीठ फेर लेते हैं, मृत्यु दर से इतनी विकराल नहीं दिख पड़ती जितनी सम्मुख आकर। सिंह कितना भयंकर जीव है, उसका अनुमान उसे देखकर ही हो सकता है। पहाड़ों से दूर से देखो तो ऊंची मेड़ के सदृश देख पड़ते हैं, उन पर चढ़ना आसान मालूम होता है, किंतु समीप जाइए तो उनकी गगन स्पर्शी चोटियों को देखकर चित्त कैसा भयभीत हो जाता है। ज्ञानशंकर ने मरने को जितना सहज समझा था उसे कहीं अधिक कठिन ज्ञात हुआ। उन्हें विचार हुआ कि मैं कैसा मंदबुद्धि हूँ कि जरा एक सी बात पर प्राण देने को तत्पर हो रहा हूँ। माना मैं राय साहब की नज़रों में गिर गया, माना गायत्री भी मुझे मुंह न लगाएगी और विद्या भी मुझसे घृणा करने लगी। अब भी क्या मैं जीवन काल में कुछ काम नहीं कर सकता, अपना जीवन सफल नहीं बना सकता? संसार का कर्म क्षेत्र इतना तंग नहीं है, मैं इस समय आज से 6-7 वर्ष पूर्व की अपेक्षा कहीं अच्छी दशा में, और मेरे 20,000 रुपये बैंक में जमा है। 2,000 मासिक की आमदनी गांव से, बंगला है, मोटर है, मकान किराए पर उठा दूं तो 50-60 माहवार और निकलने लगेंगे। अगर किसी की चक्री न करूं तो भी एक भले आदमी के बाद जीवन व्यतीत कर सकता हूं। राय साहब यदि मेरी कली खोल दे तो क्या मैं अपनी खबर नहीं ले सकता? मैं अपने कलम के जोर से इतना बिगाड़ सकता हूं कि वो किसी को मुंह दिखाने योग्य न रहेंगे। गायत्री भी मेरे पंजे में है, मेरी तरफ से जरा भी निगाह टेढ़ी करी तो आन की आन मैं उसे इस उच्चासन से गिरा सकता हूँ। उसे मैंने ही इतना नेक नाम बनाया है और बदनाम भी कर सकता हूँ। मेरी बुद्धि न जाने कहाँ चली गई थी। कूटनीति की रंगभूमि क्या इतनी संकीर्ण है? अब तक मुझे जो असफलता हुई उसी की बदौलत हुई तो अब मैं इसका दामन क्यों छोड़ूं? उसे निराशा क्यों हूँ? अगर यह टूटी हुई नौका पर बैठकर मैंने आधी नदी पार कर ली है तो अब उस पर से जल में क्यों कूद पड़ूं? ज्ञानशंकर स्नान करके जल से निकल आए, उनका चेहरा विजय ज्योति से चमक रहा था। लेकिन जिस समय शत्रु सेना शत्रु दल को मैदान से हटाकर और भी उत्साहित हो जाती है, शत्रु को इतना निर्बल और अपंग बना देती है कि फिर उसके मैदान में आने की संभावना ही न रहे, उसी प्रकार ज्ञानशंकर के हौसले भी बढ़े। सोचा, इसकी नौबत ही क्यों ना आने दूं कि मुझ पर चारों ओर से आक्षेप होने लगे और मैं अपनी सफाई देता। फिर मरकर नेक नाम बनाना चाहता था, क्यों ना मारकर वही उद्देश्य पूरा करूं? इस समय यही पुरुषोचित कर्तव्य है। मरने से मारना कहीं सुगम है। भाग्य विधाता तुम्हारी लीला कितनी विचित्र है, तूने मुझको मृत्यु से निकाल लिया, बाल बाल बचा, मैं अब भी अपने मनसूबों को पूरा कर सकता हूँ। विभव, यश, सुकृति सब कुछ मेरे अधीन है, केवल थोड़ी सी हिम्मत चाहिए। ईश्वर का कोई भय नहीं, वह सर्वज्ञ है। पर्दा तो केवल मनुष्यों की आंखों पर डालना, मुझे और काम में सिद्धस्थ हूँ। ज्ञानशंकर एक किराए के तांगे में बैठकर घर आए, रास्ते पर वही इन्हीं विचारों में लीन थे। उनकी विशिष्ट प्राप्ति के मार्ग में राय साहब भी बाधक हो रहे थे, इस बाधा को हटाना आवश्यक था। पहले ज्ञानशंकर ने निराश होकर इस मार्ग से लौट जाने का निश्चय किया था, अपने प्राण देकर इस संकट को निवृत्त होना चाहते थे। अब उन्होंने राय साहब को अपनी आकांक्षाओं की वेदी में बलिदान करने की ठानी। संसार से हिंसा कहेगा, उनकी दृष्टि में घोर पाप, सर्वथा अक्षम अमानुषीय, लेकिन दार्शनिक दृष्टि से देखिए तो इसमें पाप का संपर्क तक नहीं है। राज साहब के मरने से किसी की क्या हानि होती है? उनके बाल बच्चे नहीं है जो अनाथ हो जाएंगे, या कोई ऐसा महान कार्य भी नहीं कर रहे जो उनके मर जाने से अधूरा रह जाएगा। उनकी जायदाद का भी ह्रास नहीं होगा, बल्कि एक ऐसी व्यवस्था का आरोपण हुआ जाता है जिससे वह सुरक्षित रहेगी। समाज और अर्थशास्त्र के सिद्धांतों के अनुसार तो इसे हत्या कर भी नहीं सकते, नैतिक दृष्टि से भी उन पर कोई आपत्ति नहीं हो सकती, केवल धार्मिक दृष्टि से इसे पाप कहा जा सकता है, और लौकिक नीति के अनुसार तो यह काम केवल सराहनीय नहीं परमावश्यक है। यह जीवन संग्राम है, इस क्षेत्र में विवेक धर्म और नीति का गुजर नहीं। यह कोई धर्म युद्ध नहीं है, यहाँ कपट दगा फरेब सब कुछ उपयुक्त है अगर उससे अपना स्वार्थ सिद्ध होता है। यहाँ छापा मारना, आड़ से शस्त्र चलाना विजय प्राप्ति के साधन है। यहाँ औचित्य अनौचित्य का निर्णय हमारी सफलता के अधीन है। अगर जीत गए तो सारे धोखे और मुगालते अवसर के नाम से पुकारे जाते हैं, हमारी कार्य क्षमता की कुशलता की प्रशंसा होती है। हारे तो उन्हें पाप कहा जाता है। बस इस पत्थर को मार्ग से हटा दो और मेरा रास्ता साफ है। ज्ञानशंकर ने नाना प्रकार के तर्कों से इन मनोगत विचारों को उसी तरह प्रोत्साहित किया जैसे कोई कबूतर बाज भागे हुए कबूतरों को दाने बिखेर कर अपनी छतरी पर बुलाता है। अंत में उनकी हिंसात्मक प्रेरणा दृढ़ हो गई। जगत हिंसा के नाम से कांपता है, हिंसक पर बिना समझे बुझे चारों ओर से वार होने लगते हैं, और दुरात्मा है, दंडनीय है, उसका मुंह देखना भी पाप है। लेकिन यह अनंत संसार केवल मूर्खों की बस्ती है, उसके विचारों का उसके भाव का सम्मान करना कांटों पर चलना है। यहाँ कोई नियम नहीं, कोई सिद्धांत नहीं, कोई न्याय नहीं, इसकी जुबान बंद करने का बस एक ही उपाय है, उसकी आंख पर पदा डाल दो और वह मुझसे जरा भी ऐतराज न करेगी। इतना ही नहीं, तुम समाज के सम्मान के अधिकारी हो जाओगे। घर पहुंचकर ज्ञानशंकर तुरंत राय साहब को पुस्तकालय में गए, अंग्रेजी का वृहद रसायन कोष निकालकर विषाक्त पदार्थों के गुण और प्रभाव का अन्वेषण करने लगे।